नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु टेग बहादुर के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु टेग बहादुर ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि वे एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने प्रेम और एकता को बढ़ावा दिया और लोगों को सत्य और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से गुरु टेग बहादुर की शिक्षाओं को अपनाने और उनके महान आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वंशियों और अन्य देशों के लोगों से भारत को जानिए क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्विज भारत और संपूर्ण विश्व में रहने वाले भारत वंशियों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाती है। श्री मोदी ने इसे देश की समृद्धि धरोहर जीवन संस्कृति को जानने का एक शानदार माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि क्विज के विजेताओं को अतुल्य भारत के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में एक बैठक में ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने की व्यापक योजना की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और चुनौतियों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें तवांग से लोंगडिंग तक ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मुआवजे के मुद्दे भी शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मेन ने अधिकारियों से मार्च 2025 तक परियोजना को पूरा करने का आग्रह किया और जमीनी मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने बिजली विभाग को बिजली लाइन के रखरखाव के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने का भी निर्देश दिया और पिछले हताहतों पर दुख व्यक्त किया। इस बीच मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों और पावर ग्रिड को 15 से 20 दिनों के भीतर लंबित मुद्दों को हल करने और लाइनों को समय पर चालू करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को संरक्षित करने और इसके स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अनसंग हीरोज पर कोर कमेटी ने राज्य के भूले बिसरे नायकों का दस्तावेजीकरण करने के लिए शोध को आगे बढ़ाने का फैसला किया और राजीव गांधी विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वे जल्दी पुस्तक के रूप में निष्कर्षों को प्रकाशित करें ताकि उन्हें स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। इसके अलावा कला और संस्कृति विभाग को 13 युद्ध स्मारकों के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने समय पर पूरा करने के लिए धनराशि बढ़ाने का वादा किया। इस बीच श्री मेन ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए धन बढ़ाने का भी आश्वासन दिया, जो इन नायकों के बलिदान के लिए स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में काम करेगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगा। एक अन्य बैठक में आगामी जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव पर चर्चा की गई, जो जनवरी से फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में अरुणाचल के 20 जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कृषि वस्तुएं, वस्त्र, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थ शामिल है। इस पहल की देखरेख के लिए शिक्षा और पर्यटन मंत्री पसंग दोरजी सोना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर अरुणाचल की अनूठी संस्कृति को उजागर करना है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े थिएटर उत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव का दूसरा संस्करण कल ईटानगर में शुरू हुआ। यह अरुणाचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव भी है, जो 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें भारत और अमेरिका, पोलैंड और थाईलैंड सहित 5 देशों के कलाकार शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल में युवाओं की प्रतिभा की प्रशंसा की और विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से उन्हें समर्थन देने के लिए सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि बढ़ती थिएटर संस्कृति अरुणाचल के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने में मदद कर रही है। इस वर्ष के अरुणाचल रंग महोत्सव के राजदूत अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं, जो कल उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयास और भागीदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
गुड इवनिंग। This is Akashwani Itanagar, the news read by Morgan Bagram. Prime Minister Narendra Modi today urged the Indian diaspora and people from other countries to take part in the Bharat Ko Janiye quiz. Mr. Modi today in a social media post said that the quiz depends the connection between India and its diaspora worldwide. He called it a wonderful way to rediscover the rich heritage and vibrant culture of the country and added that the winners of the quiz will also get an opportunity to experience the wonders of incredible India. Deputy Chief Minister John Amen yesterday chaired two important meetings to preserve Arunachal Pradesh's history and promote its indigenous products. During the meeting, the Core Committee on Unsung Heroes decided to extend research to document the state's forgotten heroes and urged Rajiv Gandhi University to publish findings in book form soon to include them in school curricula. Further, the Department of Art and Culture was asked to speed up building 13 war memorials, with the Deputy CM promising increased funds for timely completion. Meanwhile, DCM Maine also assured to enhance funding for the timely completion of these projects, which will serve as lasting tributes to the service sacrifices of these heroes and help preserve their legacy for future generations. In another meeting, the upcoming Geographical Indication Festival was discussed, which is set for January-February 2025 in New Delhi. The festival will showcase 20 GI-tagged products from Arunachal, including agricultural items, textiles, handicrafts and food. A high-level committee has been set up under the chairmanship of Minister of Education and Tourism, Pasang Dorje Sona, to oversee this initiative, which aims to highlight Arunachal's unique culture on the national stage. The second edition of Arunachal Rang Mahotsav, Northeast India's biggest theatre festival, began yesterday in Itanagar. This is Arunachal Pradesh's first international theatre festival, which will run for 14 days, featuring artists from India and five countries, including the USA, Poland and Thailand. Speaking in the inaugural function, Chief Minister Pema Khandu praised the youth's talent in Arunachal and highlighted government efforts to support them through various policies and initiatives. Meanwhile, Deputy Chief Minister John Amen noted that the growing theatre culture is helping showcase Arunachal's rich history and culture. This year's Arunachal Rang Mahotsav ambassador, actor Pankaj Tripathi, who also attended the inaugural program yesterday, also applauded the state government's effort and involvement in the promotion of art and culture in the state. Earlier, Festival Director Riken Ngomle had informed that the festival will feature performances from top Indian production houses and international participants. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 116th episode of the monthly radio program. The program will broadcast on the entire network of Akashwani and Doordarshan, AIR News website and News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, PMO and the Information and Broadcasting Ministry. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The 55th edition of the International Film Festival of India, IFFI, is underway in Goa, having kicked off today and set to run through November 28. The grand opening ceremony, which took place this evening at the Shyama Prasad Mukherjee Stadium, featured the red carpet premiere of the highly anticipated opening film Better Man, directed by Australian filmmaker Michael Gracie. The ceremony was graced by Union Minister Ashwini Vaishnav, Minister of State Dr. L. Murugan, and the film's production team, along with the host of distinguished guests from the cinema world. This year's IFFI celebrations are a tribute to the rich history of Indian culture, with a focus on performances, nostalgic moments, and paying homage to legendary figures like Raj Kapoor and Mohammed Rafi. The star-studded event saw prominent actors and filmmakers such as Nagarjuna, Boman Irani, Rajkumar Rao, and many others walking the red carpet tonight. Over the course of the festival, more than 180 films from 81 countries will be showcased. In addition to the screenings, IFFI 2024 is hosting a variety of events, including the largest film bazaar in its history. That's all in this news bulletin. Namaskar.